समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।
नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम में। मैं हूं चंद्रिका जोशी। स्वास्थ्य से जरूरी कुछ नहीं, स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, या हेल्थ इज वेल्थ। ये सब बातें वक्त वक्त पर हम सुनते भी हैं और कहते भी हैं, लेकिन फिर भी बुखार, खांसी, जुकाम जैसी तकलीफें मौसम बदलते ही हमें घेरने लगती हैं। ऐसे में देश के नागरिकों के स्वास्थ्य की जब बात आती है तो जरूरी यही है कि हम सतर्क रहें, जागरूक रहें। आजकल ठंड का मौसम है और स्वाइन फ्लू एक संक्रामक बीमारी भी है, जैसे हम कह सकते हैं, और इसका असर ठंड के मौसम में अधिक देखने में मिलता है। ऐसे में अगर थोड़ी सी भी असावधानी हुई या सावधानी नहीं बरती गई तो इसकी चपेट में आ सकते हैं। फ्लू को लेकर कई सारे मिथ भी हैं। कहा यह जाता है कि स्वाइन फ्लू का खतरा उन लोगों में ज्यादा रहता है जिनका इम्यून सिस्टम थोड़ा कमजोर है। इसी तरह की बहुत सारी जिज्ञासाएं आपके मन में भी होंगी, बहुत सारे सवाल भी होंगे, तो हमें अवश्य फोन करें और इस कार्यक्रम में शामिल हों, क्योंकि आपकी भागीदारी के बिना एक कार्यक्रम अधूरा है। इसलिए हमने आज पब्लिक स्पीक का विषय भी यही लिया है, स्वाइन फ्लू के प्रति जागरूकता और इससे बचाव। स्वाइन फ्लू के क्या कारण हैं, क्या लक्षण हैं, कैसे इसका उपचार कर सकते हैं, हम इन सब पर बात करेंगे। और आपके सवालों का जवाब देने के लिए आज हमने स्टूडियो में दो विशेषज्ञ मेहमानों को आमंत्रित किया है। हमारे साथ हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के डॉक्टर विजय हड्डा और स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर राखी मेहरा। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है।
थैंक यू।
स्टूडियो की फोन लाइन्स खुल चुकी हैं और हमारे नंबर में एक बार बता दूं, 0112331444। दूसरा नंबर टोल फ्री नंबर है 1800115767। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR के जरिए सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। इससे पहले कि मैं कुछ बोलूं, हमारे पहले श्रोता जुड़ चुके हैं हमारे साथ। रायबरेली उत्तर प्रदेश से हैं रमा शंकर वाजपेयी। वाजपेयी जी बोलिए।
नमस्कार।
नमस्ते।
मैं ये पूछना चाहता था कि स्वाइन फ्लू के लक्षण क्या है। देखिए, प्रायः लोगों को नहीं पता स्वाइन फ्लू होता क्या है
जी,
और उसके बचाव के क्या उपाय।
जी जी,
देखिए वाजपेयी जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। देखिए, जो स्वाइन फ्लू जो आप बोल रहे हैं ये लगभग वैसा ही है जैसे कि आम तौर पे खांसी जुकाम होता है। तो जब खांसी जुकाम होता है तो आपको खांसी होती है, जुकाम होता है, सिर में दर्द होता है, बुखार होता है, मांसपेशियों में दर्द होने लगता है, शरीर में दर्द होने लगता है,
तो ये जब
गले में दर्द होता है, तो ये जो चीजें होती हैं जो आमतौर का जो खांसी जुकाम होता है उसमें कम होती हैं। लेकिन जो स्वाइन फ्लू है तो उसमें ये सारी चीजें होंगी, कोई भी मतलब अलग से उसका कोई लक्षण नहीं होता है, पर ये ज्यादा तेज होंगी। जैसे कि सिंपल वाले फ्लू में आपको बुखार हल्का फुल्का होगा, स्वाइन फ्लू में बुखार बहुत ज्यादा होगा, मे बी 102 डिग्री, मे बी 103 डिग्री, और वो जल्दी जल्दी आएगा, दवाई आप लोगे थोड़ी देर असर रहेगा। इसी तरह से जो शरीर में दर्द होता है वो सिंपल फ्लू में थोड़ा बहुत होगा, इसमें बहुत ज्यादा होगा। तो इस तरह से हम अगर ये लक्षण हमें हैं तो हम सोच सकते हैं कि भाई शायद हमें साधारण किस्म का फ्लू नहीं है, ये शायद स्वाइन फ्लू है। इसके साथ साथ कई लोगों को अगर साथ में ब्रीदिंग डिफिकल्टी है, मतलब सांस लेने में दिक्कत हो रही है, या छाती में दर्द हो रहा है, या थोड़ा सा जो होश बिगड़ गया है, मतलब आप पूरी तरह होश में नहीं रह रहे हैं, तो ये वाले लक्षण भी बताते हैं कि जो आपका जो फ्लू है वो सीवियर है, और सीवियर फ्लू यूजुअली स्वाइन फ्लू में ज्यादा होता है एज कम्पेयर की जो कॉमन फ्लू में होता हो।
अच्छा चंद्रिका जी, यही प्रॉब्लम है कि नॉर्मल फ्लू और इन जो H1N1 जो हमारा स्वाइन फ्लू है इसमें भेद नहीं कर पाते लोग, और वो अपने घर के इलाज वगैरह थोड़ा सा करते रहते हैं। तो यहाँ ये माध्यम ऐसा है जहाँ हम ये बताना चाहेंगे कि जैसा डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि नॉर्मल जो आपको फ्लू सिम्टम्स होते हैं जो सीजनल चेंजेस के कारण हो जाते हैं अक्सर, कि बुखार है, सिर दर्द है, गले में दर्द है, कफ आ रही है, खांसी काफी बढ़ गई है, लेकिन ये 5 से 7 दिन के भीतर जो है वो शांत हो जाते हैं, और इसमें टेम्परेचर इतना नहीं होता जो आपके वाइटल्स पे अफेक्ट ज्यादा कर सके। अच्छा। तो कई बार अगर बिना इलाज के भी आपको ठीक हो सकते हैं, लेकिन स्वाइन फ्लू में जो मेन बात ध्यान देने योग्य है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि हाई ग्रेड फीवर, ये जब अगर है और उसमें भी नॉर्मली अगर जैसे आप ज्यादा फटीग, आपको ज्यादा कमजोरी लग रही है, थकान महसूस हो रही है, तो आप घर बैठ के इलाज उसका नहीं कर पाएंगे और साथ ही उसका निदान भी नहीं हो सकता। इसलिए बेहद जरूरी है 2-3 बातों की सावधानी रखने के लिए। यदि ये सिम्टम्स 5 वर्ष से कम के बच्चे को मिल रही है, या फिर 60 या आजकल तो कहते हैं कि 50 की उम्र से ऊपर के किसी सदस्य को मिल रही है, या कोई प्रेग्नेंट लेडी है उसको मिल रहे हैं, या फिर कोई ऑलरेडी काफी क्रोनिक डिजीजेस से ग्रसित है, जैसे अस्थमेटिक है, डायबिटिक है, और भी कोई उनको सीवियर बीमारी है, हार्ट की बीमारी है, इनको अगर ऐसे सिम्टम्स मिल रहे हैं तो इमीडिएट बिना ये विचार किए कि कौन सा फ्लू है, क्या है, इनको जाकर के दिखाना चाहिए। और इस
5 वर्ष से कम और 50 वर्ष से अधिक के जो हैं, या उन्हें कोई सांस संबंधी कोई बीमारी है, अस्थमा है, या हार्ट की कोई बीमारी है, तो उनको बिना किस देरी किए हुए डॉक्टर के पास जाकर राय लेनी चाहिए। हमारे अगले श्रोता है मेरठ उत्तर प्रदेश से अभिमन्यु कुमार जी। अभिमन्यु जी बोलिए।
हाँ, गुड इवनिंग मैम।
गुड इवनिंग।
मेरा सवाल है ये है मैम, स्वाइन फ्लू जो है इसके कारण जो खान पान की व्यवस्था हमारी कैसी होनी चाहिए इस बीमारी के साथ साथ, इसके बारे में कुछ मुझे जानकारी दें आप
जी। अब अगर पता लग जाता है कि स्वाइन फ्लू है तो खान पान कैसा होना चाहिए?
देखिए अभिमन्यु जी, इसमें स्वाइन फ्लू में जहां तक खाने पीने का ज्यादा कोई संबंध नहीं है। हमें ये जानना होगा कि स्वाइन फ्लू है जो एक दूसरे से फैलता है, ये और किसी आदमी को फ्लू है, वो छींकता है या खांसी करता है तो बिल्कुल भी सावधानी नहीं रखता है। तो ज्यादातर ये होता है कि एक आदमी को फ्लू हुआ, वो खांसी करता है, छींकता है और उसके द्वारा दूसरे लोगों को लगता है, तो इसमें खाने पीने का ज्यादा महत्व नहीं है। और एक कॉमन मिथ है कि भाई अगर हम फ्लू है तो हम दही खाएंगे या दूध पिएंगे तो बढ़ जाएगा, वो बिल्कुल एक मिथ है, उसमें कोई साइंटिफिक कोई बेसिस नहीं है उस चीज का। तो आप ये समझिए कि खाने पीने का स्वाइन फ्लू से कोई नाता नहीं
है। लेकिन यहाँ पे आयुर्वेद का थोड़ा सा अलग सा व्यू आ जाता है, क्योंकि आयुर्वेद कहता है कि कोई भी ज्वर या कोई भी फीवर होता है वो बेसिकली आपके जो है डाइजेशन पावर के वीक होने, यानी अग्नि के मंद होने से होता है। और जब हमारे ऐसा हो जाता है तो हमारे डाइजेशन पावर स्लो हो जाता है। तो क्या जरूरी है कि उसी दिन परांठे और पूड़ी और उसी दिन गरिष्ठ भोजन किया जाए कि जिस दिन बीमार है? तो बट नेचुरल, जैसे पहले कहते थे कि भाई खिचड़ी खाइए और हल्का खाना खाइए, गर्म खाना खाइए, रखा हुआ ठंडा खाना नहीं खाइए, ये डाइजेशन में आपके डाइजेशन को और भी स्लो करता है। तो ये प्रिकॉशंस हैं। और कुछ एक हद तक जैसे आप ये यूज कर सकते हो कि तुलसी है
जी,
अदरक है, ये स्पाइसेस जो है वो आपकी डाइजेस्टिव पावर को इग्नाइट करते हैं, यानी कि और बढ़ाते हैं, तो ये रादर देन आपको नुकसान पहुंचाने के हेल्प ही करेंगे।
हाँ,
तो इसमें एक बहुत अच्छा मुझे बात आ गई कि यदि स्वाइन फ्लू से पीड़ित है तो सुबह उठेंगे ना तो चाय बनाएंगे तो उसमें लौंग भी डालिए 2, और तुलसी के पत्ते भी डालिए, अदरक भी डालिए, और उसको उबाल करके जो चाय बनाएंगे वो ज्यादा इफेक्टिव होगी। इसी तरह रात में सोने के पहले गरम दूध में हल्दी डाल लीजिए।
ये तो बहुत आसान से उपाय हैं, और ये नहीं कि आप इनसे ठीक हो जाएंगे, लेकिन ये मदद
ठीक
करेंगे,
नहीं हो जाएंगे,
मदद
करेंगे, इम्यूनिटी को वो ज्यादा प्रोग्रेशन करेगा, डेवलप करेगा, ताकि आप उससे फाइट कर सके।
देखिए मतलब कहने का ये है कि आप स्वस्थ खाइए, अच्छा खाइए
जी। दिल्ली से मदन लाल है हमारे साथ। हेलो।
हेलो, नमस्कार जी।
नमस्कार, बोलिए।
मैं मदन लाल बोला था, मैं पूछना चाह रहा था कि इसके प्राथमिक उपचार क्या है और किस तरह से पता लगेगा कि स्वाइन फ्लू है?
अच्छा, किस तरह से? ये डॉक्टर साहब, इन्होंने जैसे पूछा किस तरह से पता लगेगा ये स्वाइन फ्लू है, यहाँ पर थोड़ा सा जोड़ना चाहूंगी कि ये जो H1N1 वायरस कहा जाता, क्या ये स्वाइन फ्लू उसी से होता है?
देखिए, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले भी किसी श्रोतागण ने पूछा था कि इसके सिम्टम्स क्या है, लक्षण क्या है, वो हम बता चुके हैं, फिर बता देते हैं कि देखो जो फ्लू होता है उसमें आदमी को छींके आना, गले में दर्द होना, गला खराब होना, बुखार होना, शरीर में दर्द होना, मांसपेशी में दर्द होना, सिर में दर्द होना, ये कॉमन लक्षण होते हैं। लेकिन स्वाइन फ्लू में जैसे अभी मैडम ने बताया था कि हाई ग्रेड फीवर होता है, मसल पेन होगा वो बहुत ज्यादा होगा और ब्रीदिंग की डिफिकल्टी भी हो सकती है, छाती में दर्द हो सकता है। तो ये चीजें हैं तो सारी ये इंडिकेट करते हैं कि आपको
तो
सिंपल फ्लू जाए स्वाइन फ्लू है।
क्या करना चाहिए अगर ऐसा लगे कि हाँ भाई खांसी है रुक नहीं रही या बुखार नहीं उतर रहा या बदन में दर्द है मांसपेशियों में दर्द है, तो जैसे किसी को इसके लिए एकदम तुरंत क्या करना चाहिए?
देखिए सबसे जरूरी चीज तो यह है कि इनमें से जो भी जो मैंने बताए हैं कि बहुत ही हाई ग्रेड फीवर हो, बहुत तेज बॉडी पेन हो या शरीर में दर्द हो या वोमिटिंग हो रही हो बार बार,
अच्छा,
या उनका सेंसोरियम थोड़ा सा बिगड़ गया है,
अच्छा,
तो ऐसे केस में बिल्कुल रिस्क नहीं लेना, तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपको इजीली देखते बता देते हैं कि ये तो सीवियर फ्लू के लक्षण है या स्वाइन फ्लू के लक्षण है और उसके आराम से ट्रीटमेंट हो जाता है। खाने के लिए गोलियां देंगे जो 5 दिन तक लेनी होती है और ज्यादातर लोग ठीक हो जाते हैं।
इसको मौसमी इन्फ्लुएंजा भी कह सकते हैं?
देखिए इसमें यहाँ पे मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा, मौसमी इन्फ्लुएंजा और स्वाइन फ्लू में थोड़ा ही डिफरेंस होता है।
अच्छा अच्छा,
जो मैं बता रहा हूँ बार बार कि मौसमी इन्फ्लुएंजा जो होता है उसके सिम्टम्स बहुत ज्यादा सीवियर नहीं होते,
लेकिन स्वाइन फ्लू के बहुत सीवियर,
बहुत सीवियर होते हैं। और मौसमी जो जुकाम वगैरह होता
है वो हल्का फुल्का है,
हल्का फुल्का 3-4-5 दिन में ठीक हो जाता है।
ठीक है
चंद्रिका जी, ये इसमें एक चीज और जोड़ा जा सकता है कि एक साधारण आदमी जिसको बहुत ज्यादा सिम्टम्स और ये सब नहीं पता होते हाँ। तो वो बहुत जल्दी भेद नहीं कर पाते कि प्रॉब्लम कहाँ है, कब जाया जाए, कब घर में ठीक हो जाया जाए। तो यहाँ मैं थोड़ा सा एक पॉइंट बताती हूँ कि कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, ऐसे 3 कैटेगरी में यदि हम बांट दें इनको, तो पहली कैटेगरी जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि जिन सीजनल आपको जो फ्लू के लक्षण वहीं तक आ रहे हैं तो आपको डॉक्टर को दिखाने की जरूरत नहीं होती, घर में आप आराम करेंगे, फ्लू इंटेक लेंगे, विटामिन सी यानी कि नींबू का पानी भी लेंगे तो वो भी आपको काफी हद तक आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, हीलिंग प्रोसेस को एनहांस करेगा। लेकिन यदि यही लक्षण जो अभी बताए गए हैं, यही लक्षण किसी इम्यूनो सप्रेसेंट मतलब यानी जो कम्प्रोमाइज्ड कोई पेशेंट है जो ऑलरेडी जैसे क्रॉनिक सिकनेस, मैंने पहले भी बताया कि डायबिटीज है, अस्थमा है और कोई भी क्रॉनिक डिजीजेज आपको है, हार्ट डिजीजेज है और आपको ये लक्षण हो गए हैं, सीवियर है नहीं है ये बात की बात है। दूसरी बात है जैसा मैंने बताया कि 5 साल से कम, 50 साल से उम्र अधिक है, प्रेग्नेंट है और यदि वो किसी दवाई पे आश्रित हैं और ये सिम्टम्स आपके आ गए हैं तो निकटतम चिकित्सक को एक बार दिखा देना बेहतर होगा, क्योंकि जो अगर H1N1 डायग्नोज हो जाता है तो एंटीवायरल जो मेडिकेशन है वो 48 आवर्स के पहले अगर शुरू हो तो ज्यादा अच्छे से रिकवर,
इसका उपचार संभव है। मतलब
बिल्कुल
ठीक। दिल्ली से धीरज कुमार है हमारे साथ।
नमस्ते मैम।
नमस्ते
मैम, मेरा सवाल ये है कि मैम आज का जो दिशा है मैम, तो मैम जैसे कि शरीर में मैम हमें जलन होती है और आंख में भी जलन होती है मैम, क्या क्या कारण है? जो
बुखार भी है, बुखार भी होता है
मैम, बुखार में तो पसीना ज्यादा आता है मैम।
मुझे अचानक एक गाना याद आ गया, सीने में जलन आंखों में तूफान क्यों है।
हाँ बोलिए बोलिए बोलिए।
मैं संदेश देना चाहता हूँ।
हाँ हाँ,
जो हमारे जो सेना वगैरह अभी जो पकड़ा हुई है
हम ना देखिए धीरे धीरे और लोगों को मौका मिलेगा जो इस विषय पर पूछना चाहते हैं। तो आपको बुखार नहीं है लेकिन पसीना भी आता है और बॉडी एक भी है, बदन में दर्द भी रहता है,
आंखों में जलन भी है।
देखिए ये तो जो आप बता रही हैं इनमें से तो कोई भी
स्वाइन फ्लू का लक्षण,
स्वाइन फ्लू या फ्लू के लक्षण नहीं लग रहे, फिर भी अगर आपको ये दिक्कत ज्यादा है तो मेरे को लगता है कि आप किसी फिजिशियन को दिखाना पड़ेगा आपको, ताकि वो आपकी अच्छी तरह जांच करके बता पाए कि आपके बहुत सारे पसीने क्यों आते हैं या सीने में या आंखों में जलन क्यों हो रही है, ये फ्लू की वजह से तो
नहीं है। बांदा उत्तर प्रदेश से अगले श्रोता हैं धनीराम हमारे साथ। धनीराम जी बोलिए फटाफट।
नमस्कार दीदी, स्वाइन फ्लू के बारे में ये बचाव
कैसे करें?
ये बहुत अच्छा प्रश्न है।
हाँ भाई हो ही ना स्वाइन फ्लू।
बिल्कुल बिल्कुल।
इसके लिए सबसे पहले तो एक बात है कि भारतीय परंपरा के हिसाब से नमस्ते करना शुरू करिए, हाथ मिलाना कम। दूसरे ये इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो आप जब खांसते हैं, जो इससे पीड़ित रोगी है ना, अक्सर जो नाम है स्वाइन कि पिग से होता है, तो पिग को कोई हैंडल नहीं करने जा रहा, वो जो पिग को हैंडल करते हैं एक्चुअली वहीं से शुरू हुई थी, 2009 में आउटबर्स्ट हुआ था जब, तो मेक्सिको में ये वहां से आया था, इसलिए ये नाम रखा गया है। लेकिन आपको बता दूं जो आजकल हमारे बीच में फैल रहा है वो एक दूसरे के खांसने से, उसके ड्रॉप्स जो गिरते हैं इधर
जब खांसते समय हाथ मुंह पर रखेंगे
जी,
और फिर वो हाथ किसी से मिला लिया
हाँ, आपको तो मैं बता दूं कि ये जो जीवाणु उसमें होते हैं उनका इंक्यूबेशन पीरियड भी काफी है, 48 आवर्स उनका है, होता है। और एक ग्रसित रोगी यानी कि जिसको H1N1 है, वो एक लक्षण प्रकट होने के एक दिन पहले से और लक्षण प्रकट होने के 7 दिन बाद तक स्प्रेड कर सकता है।
अच्छा,
तो देखिए कितनी सीवियरिटी। अब आपको ये नहीं पता कि अगला अभी खांस रहा है या कल खांस चुका, तो आप हाथ जितना ना मिलाएं। और दूसरी बात है, हाथ से ही नहीं, बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे लिनन, घर के लिनन कपड़े वगैरह होते हैं, आपके पेंसिल, गाड़ी की चाबी, और जो भी चीजें जल्दी
तो
जल्दी नहीं धुलती,
जैसे बाहर निकलना है तो बेहतर आदत यह है कि आप मेडिकेटेड जो साबुन है उससे
बार बार हाथ धोने की, यानी कि एक नियम बना लें कि मुंह में कुछ भी हाथ रखना है या आंखों में हाथ लगाना है या नाक में हाथ लगाना है तो हाथ को अच्छी तरह से वॉश कर ले। वॉश करने का भी तरीका होता है, ये नहीं कि फटफट फटफट कर दिए और आपके नेल्स में सब रह गए, उसकी एक टेक्निक होती है हैंड वॉशिंग, और जो सभी उससे प्रसारित होती है कि किस तरह से हाथ धोया जाए। इसका मतलब है हाथ धो सकते हैं। देखिए यहाँ गांव के लोग भी होते हैं, वो कहते हैं कि हम राख से धो लें जी, राख भी बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन फिर भी आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे आपने वहीं लोकल कुछ काम कर रहे हो और राख से हाथ धो रहे हैं, साबुन से हाथ धोना न भूलें खाना खाने के पहले।
यानी कि रोग को दूर करने के लिए जो बचाव है उनमें हाइजीन, साफ सफाई, स्वच्छता, डॉक्टर साहब बहुत जरूरी है।
और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो जिन मरीजों को फ्लू हो गया है
जी,
उनकी बड़ी जिम्मेदारी होती है इसके दौरान कि दूसरे लोगों को फ्लू ना हो
जी,
तो उसमें बहुत ही सावधानी रखनी चाहिए। जैसे आपको मान लो फ्लू है तो आप जब छींकते हैं तो मुंह पे हाथ रखें या कपड़ा रखें।
अच्छा,
या टिश्यू पेपर रखें,
जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि नींबू पानी या इस तरह की चीजें ले सकते हैं,
नीम का पानी, नीम के पानी में हाथ डुबो करके रखेंगे, उससे भी डिसइंफेक्टेड हो सकता है हाथ।
अच्छा।
लेकिन हर बार आप नीम का पानी कैसे बनाएंगे, इससे अच्छा साबुन से आप हाथ अच्छे से धोएं, और नीम का पानी बहुत ज्यादा सार्थक है क्योंकि इसमें एंटीबायोटिक एज वेल एंटीवायरल।
इस समय ज्यादा जो फल मिल रहे हैं उसमें से कौन से फल ले सकते हैं?
देखो फल के बारे में तो आई थिंक यही बता पाएंगे कि कौन से फल खाने चाहिए, पर मैं कुछ और बात कर रहा था कि एक तो ये जिसको फ्लू हो गया है वो छींकते हुए खांसी करते हुए सावधानी रखे
जी।
उसके अलावा देखो कई बार ये होता है कि जो हम रुमाल में, जैसे कई लोग छींकते हैं उस रुमाल को घर लेके जाकर दूसरे लोग छूते हैं तो उनको भी हो जाता है। और आजकल एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जो हम मोबाइल यूज करते हैं, लैपटॉप यूज करते हैं, तो वो जो शेयर करते हैं उसको तो उसको स्टरलाइज भी नहीं कर सकता
जी।
हाथ तो आप वॉश भी कर सकते हो, उसको तो ना कोई धो सकता है ना कोई।
मैं बताऊं कई बार वो कोलिन वगैरह से और उससे सैनिटाइजर से साफ कर ले सकते हैं, जिससे आपको फ्रिक्वेंटली अपने ब्रश चेंज करिए, जो टूथब्रश है, बहुत सारी सावधानियां रखने की जरूरत है जो हम लोग यूजुअली नहीं रखते
जी।
आपने फ्रूट्स की बात की थी,
हाँ,
फ्रूट्स में एक मुझे ध्यान आ रहा है कि देखिए अभी मौसम आंवले का गया नहीं है, आंवला, अनार, सेब, ये प्लेंटी मिल रहे हैं, अंगूर मिल रहे हैं, ये सब देख कहीं ना कहीं विटामिन सी रिसोर्सेस है, और ये विटामिन सी से अगर आपको अपनी खुद की, यानी ये कह सकते हैं कि हमारी खुद के अंदर की जो CRPF है, यानी जो हमारी सैनिक शक्ति है, उसको अगर हमें बढ़ाना है, इम्यूनिटी अपनी बढ़ानी है, तो हमें ये इसका रोजाना
सी विटामिन
सेवन जरूर करना चाहिए, और मैंने तुलसी जरूर बताई थी
जी। हाँ जी, हमारे जिन श्रोताओं ने अभी स्टेशन ट्यून किया है उन्हें हम बता दें कि ये कार्यक्रम है पब्लिक स्पीक, हम स्वाइन फ्लू के प्रति जागरूकता और इससे बचाव विषय पर चर्चा कर रहे हैं। हम आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के डॉक्टर विजय हड्डा और स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर राखी मेहरा। आप कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। दो नंबर है हमारे, एक टोल फ्री नंबर है 1800115767, दूसरा नंबर है 0112331444। आप हिंदी या इंग्लिश में किसी में भी कार्यक्रम में सवाल पूछ सकते हैं। ये दूरदर्शन की डीटीएच सेवा पर भी उपलब्ध है। अगले श्रोता है बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से ऋषिपाल शर्मा जी। ऋषिपाल शर्मा जी बोलिए, बोलिए बोलिए। शर्मा जी सुन रहे? नहीं, मुझे नहीं लगता सुन पा रहे। जैसे हम अभी इन सावधानियों पर चर्चा कर रहे थे, जैसे घर में बच्चे हैं तो उनके लिए कुछ ऐसे जरूरी टिप्स हैं जो, क्योंकि बच्चे तो स्कूल में जाते हैं फिर और बच्चों के साथ मिलते हैं, तो
हाथ धोना तो पहली शर्त है। उनको बिल्कुल ये सैनिटाइजेशन की आदत कहे घर से पड़ती है और स्कूल में सिखाया जाता है, वो फॉलो कितना करते हैं? वो बार एक्चुअली बच्चे तो फॉलो ज्यादा करते हैं हमसे, क्योंकि हम
अगर
कोई ज्यादा ही,
मान लीजिए बच्चा बीमार है तो वो एक सर्टेन टाइम तक स्कूल ना जाए, क्या स्कूल प्रबंधन
आइसोलेशन बहुत
जरूरी है कि जिसको फ्लू है तो जहां तक हो सके अननेसरी बाहर ना जाए।
जी जी।
और उसका भी ये है कि कब तक रखना है घर पे, तो उसके लिए है कि जब बुखार ठीक हो जाए उसके कम से कम 24 घंटे तक।
अच्छा।
जैसे आज किसी का बुखार ठीक हुआ तो कम से कम अगले 24 घंटे उसके बाद ही उसको बाहर जाना चाहिए।
ठीक। अगले श्रोता दिल्ली से हैं संजीव कुमार। संजीव जी बोलिए।
जी मैम नमस्कार।
नमस्कार
जी मैम। जैसे अभी सर ने बताया कि खांसने और छींकने से मैं ये स्वाइन फ्लू फैलता है, तो इसमें कितनी दूर तक इसका प्रभाव रहता है, और अगर हम मास्क लगाए तो क्या हम उससे बच सकते हैं?
जी।
मास्क किस प्रकार का लगाने चाहिए? जी मैम दूसरे प्रश्न था, इसका कोई टीका वगैरह बना है, कुछ वैक्सीनेशन बनी जिससे हम इसके बच सके?
अच्छा।
जी मैम जी अंतिम प्रश्न था, जैसे मैंने बताया हाथ धोने चाहिए, जैसे आजकल बाजार में हैंड सैनिटाइजर मिलते हैं तो क्या हम उनका भी प्रयोग करके स्वाइन फ्लू से बच सकते हैं?
जी बहुत अच्छा प्रश्न है। एक तो मैं ये पहले वाले प्रश्न का जवाब दे देती हूँ आपके कि कितनी दूर तक फैलता है। एक बार छींकने से आपके जो अगर इन्फेक्टेड एरोसोल है वो 6 फीट तक उसकी दूरी वो कवर कर सकता है। तो ये ध्यान रखिए कि कोई बंदा बैठा है हाथ नहीं मिलाए कोई बात नहीं, लेकिन आसपास की चीजें भी आपने छुई हैं और बिना हाथ धोए अगर आपने खाना खा लिया तो, या फिर आपने नाक और आंख छू ली तो आप इन्फेक्टेड हो सकते हैं।
अच्छा, मास्क कैसे लगाएं और क्या मास्क से उचित वो बचाव हो सकता है?
देखिए दूसरी ये जो आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा है, मास्क से बचाव हो सकता है क्योंकि जो वायरस है हमारे शरीर के अंदर या तो नाक से जाता है या मुंह से जाता है। तो अगर हम किसी तरह से इनको ढक के रखें चाहे मास्क से या किसी और चीज से तो बचाव तो संभव है।
इन्होंने पूछा कि कोई ऐसा वैक्सीन है जो पहले ही लगवाया जा सकता है?
और बिल्कुल, देखो सबसे जो कारगर अगर उपाय है रोकने का तो सबसे ज्यादा कारगर तो आई थिंक वैक्सीन ही है।
अच्छा।
और वैक्सीन जो बाजार में अभी दो तरह के वैक्सीन अवेलेबल हैं। एक वैक्सीन है जो 3 स्ट्रेन को कवर करता है बेसिकली।
अच्छा।
जिसको ट्राइवेलेंट बोलते हैं।
अच्छा।
एक दूसरा वैक्सीन वो 4 स्ट्रेन को कवर करता है जो क्वाड्रीवेलेंट बोलते हैं।
अच्छा अच्छा।
तो उसमें थोड़ा सा अंतर है पर दोनों ही लगा सकते हैं।
मतलब कोई स्वस्थ व्यक्ति भी इसे लगा सकता है ताकि
हाँ,
उसको
इसके बारे में ये है कि ऐसे आइडियली तो सबको लगाना चाहिए, मतलब बच्चे जो 6 महीने से ऊपर हैं तो उनको सबको और 65 ईयर एज तक लगा सकते हैं,
खासतौर से बदलते सीजन और जहां पे ये प्रेविलेंट हो रखा है।
अच्छा। और चौथा संजीव जी ने सवाल पूछा था सैनिटाइजर जो होते हैं,
अब ये है कि देखिए वो बोलते हैं कि भाई बेस्ट वे तो हैंड वॉशिंग का है सोप वाटर से, पर वो सोप क्योंकि हम साथ में नहीं लेके जा सकते तो उसका रिप्लेसमेंट ये कि एटलीस्ट कुछ तो कर रहे हैं आप
जी,
तो सैनिटाइजर यूज कर सकते हैं वो भी इफेक्टिव होता है
जी। हाँ, लेकिन वो भी 100% प्रूफ नहीं है।
हाँ।
कि आपने हाँ उससे हाथ धो लिए तो आपको नहीं होगा या वॉश कर लिया, बिकॉज अल्कोहल बेस्ड होता है और इसीलिए मैंने कहा था कि नीम का पानी ले जाना भी हर जगह संभव नहीं है, तो हर चीज की एक लिमिटेशन है, इसीलिए वो उपाय जो हर जगह उपलब्ध है
जी,
वो है
कर
आजकल साबुन
जी। रोहतक हरियाणा से हैं अगले श्रोता चांद सिंह। हेलो
नमस्कार मैम।
नमस्ते जी बोलिए।
डॉक्टर साहब का भी नमस्कार जी।
जी नमस्कार।
मैं डॉक्टर साहब से ये पूछ रहा था जी, मैं गांव से बिलोंग करता हूँ तो इसमें यहाँ पर कुछ देसी नुस्खे ये बताते हैं जैसे बकरी का दूध या बेल पत्र का कुछ ये जूस जास ये काम करता है।
चांद सिंह जी, बकरी का दूध तो मेरे लिए भी न्यूज है। लेकिन मैं आपको जरूर बताऊंगी देशी नुस्खे, जिससे आप कम से कम सीजनल फ्लू और यदि आप
इसलिए तो नहीं कह रही कि जैसे सुपाच्य हो पचने में आसान हो इस वजह से,
नहीं इस वजह से भी, और ये प्रूफ्ड है इनमें से कई एक चीजें जो एंटीवायरल और एंटी बायोटिक के रूप में जानी जाती हैं उनके एक्टिविटी
जी हमारे श्रोताओं को
तो,
बताइए
जी बिल्कुल, इसलिए मैंने कहा था कि सुबह की चाय आपको बताया था। एक चीज तो पक्का है कि तुलसी जो हर घर में होती है और तुलसी के पत्ते चबाने नहीं होते, उससे हमारा ये टाटर खराब होता है, सॉरी एनामल खराब होता है,
दांतों का एनामल पीला पड़ता
है, तो आपको उसको पानी में भिगो करके उस पानी को पीने का उपाय कर सकते हैं। हल्दी काफी अच्छी होती है, और इसके साथ सबसे बड़ी बात जो नोट कर लीजिए, उसको गिलोय बोलते हैं, गुड़ूची, और इसको टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया होता है इसका लैटिन नेम। इसकी टैबलेट भी मिलती है, ये काफी हद तक हर तरह के फ्लू लाइक सिम्टम से उनको निजात दिलाती है। कफ की प्रॉब्लम होती है तो एक गोजिवादी एक काढ़ा होता है जिसमें ऐसी चीजें होती हैं जो आपके कफ के प्रोडक्शन जो काफी ज्यादा हो रहा है या ड्राई कफ हो रहा है उसमें आपको सूदिंग इफेक्ट देती है।
अच्छा।
तो काफी हद तक जैसे देखा जाए कि जड़ी बूटियां जो बनी हुई हैं आप जिनको इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आप किसी चिकित्सक को जो आयुर्वेद चिकित्सक की सलाह से, क्योंकि आपको अगर H1N1 हो गया है, दो कंडीशन होती है, एक तो प्रिवेंटिव मेजर और एक
जैसे मौसम बदल रहा है, तो ये तो आमतौर पर भी घरों में अदरक की चाय तुलसी की चाय पी जाती है,
ये करना चाहिए खासतौर से जब सीजन दो सीजन चेंज हो रहे हैं, और खासतौर से तब जब कभी भी बारिश हो रही है, कभी भी बादल गिर रहे हैं, कभी भी ठंड हो रही, बेसिकली टेम्परेचर वेरिएशन इन एनवायरमेंट वो सबसे ज्यादा नुकसान करता है।
तापमान में जो घटता है बढ़ता है एकदम, या नमी एकदम हो जाती है
वो अपनी बॉडी को,
तो ये वायरस उसमें संक्रमण ज्यादा है।
बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आप देखेंगे ना, अगर इंडिया में तो ज्यादातर ये वाला सीजन होता है,
हाँ जी,
नवंबर से लेकर अप्रैल तक, क्योंकि इसमें मौसम चेंज होता रहता है बार बार।
इसमें एक चीज और है, जैसे कई बार इन्वायरमेंट को हम प्यूरिफिकेशन के लिए हम लोग बोलते थे, पहले यज्ञ होता था ना,
हाँ जी,
तो आहुति देना है, तो वो जो सामग्री जो है यज्ञ की हवन सामग्री जिसको बोलते हैं, सबको पता होता है उसमें गुगुल होता है, दारू हरिद्रा होती है, कपूर होती है, ये सारी चीजें वो कहीं ना कहीं इन पैथोजेंस को मारती ही है। तो ये भी सीजनल चेंज में अगर हम करें छोटी छोटी,
तो कुछ तो लाभ देगा,
तो लाभ तो देता ही है अपने उतने एनवायरनमेंट को, जैसे हम कहते हैं ना एरोसोल 6 फीट तक स्प्रेड कर सकता है,
मतलब
आप इतनी दूर तक अगर कुछ छुए तो हो सकता है कहीं से मिल जाए, ले इसी तरह जब हम एक घी का दीपक जलाते हैं
जी,
देशी गाय के घी का दीपक, तो उसका भी सराउंडिंग ऐसे बनती है कि उतने एरिया में कम से कम उन पैथोजेंस का इफेक्ट ना हो
जी।
लेकिन मेरे को लगता है कि मेरी एक ही सलाह है कि आप घरेलू नुस्खे अपनाने के बजाय अपने,
जब तक आप बीमार नहीं पड़े,
आप घरेलू नुस्खे भी अपनाते हैं तो प्लीज किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह से
ही लें
अपने आप से कुछ।
लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको ज्यादा बुखार है, ज्यादा खांसी है, ज्यादा जुकाम है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में कुछ गड़बड़ है,
बिल्कुल,
जो डॉक्टर को दिखाने पर ही ठीक होगी। दिल्ली से अगले श्रोता है दिवाकर। हेलो, हाँ नमस्ते दिवाकर, बोलिए।
मैडम जी, मुझे सन फ्लू की पहचान क्या होती है, इसके क्या लक्षण होते हैं?
हाँ
जी, और इसको उपाय क्या कर सकते हैं
हम उसी पर ही बात कर रहे हैं, लक्षण जो बताए डॉक्टर साहब ने कई बार दोहराया है
जी। इसमें एक चीज और हमारी रह गई थी, अगर आप शुरू से शायद सुन नहीं पा रहे हैं, लेकिन नॉर्मल फ्लू के जो लक्षण है वो तो आपको समझ में आ गए। इसमें एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट है, यदि आपको कहीं पे भी डिजीनेस है, कंफ्यूजन हो रहा है, मेंटल स्टेट थोड़ी सी साउंड नहीं हुआ है, और आपको डिफिकल्टी हो रही है किसी चीज को डिसाइड करने में, तब आप डॉक्टर को दिखाना ना भूलें, क्योंकि आप कैटेगरी 2 में आ गए हैं और हो सकता है वो कैटेगरी 3 में कन्वर्ट हो जाए, और घातक है। ये मैं पहले बोल रही हूँ कि यदि ऐसी चीजें हो जाती हैं और आप घर बैठ के घरेलू नुस्खे करते रहिएगा, तो ये घातक है, फैटल है, मृत्यु तक होती है।
बीमार होने के बाद घरेलू नुस्खों पर ना जाएं, बीमार होने से पहले प्रिवेंटिव मेजर्स के तौर पे ये कर सकते हैं। दिल्ली से बलराम यादव हैं हमारे साथ, हमारे अगले श्रोता जी। बलराम जी बोलिए।
स्टूडियो में सभी लोगों को मेरा नमस्कार
जी। नमस्ते,
नमस्कार।
मैं नजफगर दिल्ली से ब्लाइंड श्रोता हूँ
जी, आपका स्वागत है।
मैं ये पूछ रहा था कि जैसे मान लीजिए
कितने दिनों तक सर्दी अगर रहती है तो ये मान लिया जाए कि स्वाइन फ्लू हो गया।
अच्छा,
देखिए बलराम जी, हमने पहले भी शायद प्रोग्राम की शुरुआत में बताया था कि जो नॉर्मल कॉमन कोल्ड या जिसको सर्दी जुकाम बोलते हैं वो यूजुअली 2-3 दिन रहता है और हल्का फुल्का होता है, कि आपको हल्का सा जुकाम होएगा या गले में दर्द होगा या हल्का फुल्का बुखार होगा। और जबकि जो स्वाइन फ्लू की जब बात करते हैं तो चीजें तो यही होती हैं, लेकिन वो ज्यादा तेज होती हैं। जैसे बुखार होगा तो हाई ग्रेड होगा, बॉडी में पेन हो सकता है, जैसे अभी मैडम ने बात की कि आपका मेंटल डिजीनेस या मानसिक थोड़ा सा बेहोशी टाइप का होना या गफलत में जाना, ये हो सकता है। या फिर कई लोगों को वॉमिटिंग होती है सीवियर वाले, वॉमिटिंग होना या मांसपेशियों में बहुत तेज दर्द होना, ये अगर है तो हमें सोच लेना चाहिए कि भैया तो स्वाइन फ्लू है और जल्दी से डॉक्टर के पास जाना चाहिए।
एक डॉक्टर साहब और मुझे अचानक एकदम याद आ गया, छोटे बच्चे हैं ना जो, तो यदि वो रात में काफी गीला कर रहे हैं, फ्रिक्वेंट उनके जो है आउटपुट, यूरिन आउटपुट बढ़ गया है, तभी भी ये सीवियर हो सकता है। अच्छा। इसीलिए तुरंत दिखाएं, और खासतौर से 5 साल के बच्चे, छोटे बच्चों को तो बहुत ध्यान से रखें।
बिल्कुल बिल्कुल, जैसे यूरिन की बात कर रहे हैं तो दोनों तरफ है कि बच्चों में यूरिन कम आना और अडल्ट में यूरिन कम आना कम होना,
अच्छा,
दोनों ही सीवियरिटी को इंडिकेट करते हैं।
अच्छा, तो पानी का इंटेक इसमें ज्यादा होना चाहिए नॉर्मली, मतलब
बिल्कुल बिल्कुल, फ्लू का इलाज यही होता है कि पैरासिटामोल और पानी।
अच्छा,
खूब सारा पानी लो, पैरासिटामोल लो, और
आप पानी केवल जरूरी नहीं, ये वाला प्लेन पानी, आप जूस, दाल का पानी, नारियल पानी, नींबू पानी, ये सब पी सकते हैं।
ब्रह्मदत्त है हमारे अगले श्रोता दिल्ली से। ब्रह्मदत्त जी बोलिए।
मैम नमस्ते, मैं ब्रह्मदत्त मंगलपुरी दिल्ली से बोल रहा हूँ, विशेषज्ञों को प्रणाम। मैं, मेरा ये प्रश्न है, स्वाइन फ्लू और कॉमन फ्लू में सामान्य अंतर क्या होता है, क्या अधिक खतरनाक होता है? धन्यवाद।
देखिए ये तो मतलब बहुत सारे श्रोताओं ने सेम क्वेश्चन पूछा है, और अभी अभी मैंने पहले वाले श्रोता को भी यही बताया था कि फ्लू के सिम्टम तो सेम ही हैं, चाहे स्वाइन फ्लू हो चाहे सिंपल फ्लू हो, कि जुकाम होगा, गले में दर्द होगा, हल्का फुल्का बुखार होगा, शरीर में दर्द होगा। लेकिन जब यही लक्षण है, इनकी सीवियरिटी जब बढ़ जाए तो सिंपल फ्लू के बजाय स्वाइन फ्लू में होता है।
ठीक है, अगले श्रोता है हरियाणा से श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जी बोलिए।
हाँ जी, सब प्रणाम जी,
नमस्ते, बोलिए।
मैम ये पूछना चाह रहा था, हाँ जी मैम, ये पैर में यार पेट में दर्द भी होता है मुझे
स्वाइन फ्लू में?
हाँ
डॉक्टर साहब से पूछते हैं।
देखिए स्वाइन फ्लू में पेट का दर्द अकेला कभी नहीं होता, अकेला अगर पेट में दर्द है तो हमें और कारण देखने चाहिए। हाँ, आपका गला खराब है, जुकाम है, उसके दौरान पेट में दर्द हो सकता है, तो ये फ्लू की वजह से हो सकता है, पर अकेला पेट में दर्द होना यूजुअली फ्लू की वजह से नहीं होता, आपको और कारण देखने चाहिए।
कॉन्स्टिपेशन, कई बार डायरिया, कभी पेट में दर्द, इसलिए आप एक चीज को नहीं कह सकते कि ये स्वाइन फ्लू में, ये पिन पॉइंट आपको पेट में दर्द हो गया तो स्वाइन फ्लू हो गया। उसके साथ एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं और पेट में दर्द है तो कैटेगरी बदल रही है।
बिल्कुल, लेकिन ज्यादातर ये होता है कि गला खराब होना, जुकाम होना, ये सबसे ज्यादा कॉमन यही है, छींक आना, गला खराब होना।
अच्छा, जब हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो स्वाइन फ्लू का टेस्ट किस तरह से होता है, मतलब ब्लड टेस्ट से पता लगेगा या कोई और चीज, किस टेस्ट?
देखिए स्वाइन फ्लू टेस्ट करना एक तो इजी है, मतलब उसमें हम थ्रोट से एक स्वैब लेते हैं, मुंह खोल के पेशेंट को बोलते हैं और एक स्वैब लेके पीछे मुंह में डाल के पीछे वॉल को टच करते हैं फेरिंग्स में।
इसमें गले में सूजन वगैरह भी रहती है?
हाँ बिल्कुल, क्योंकि गले जो प्राइमरी साइट है इन्फेक्शन की तो गले में ही होती है।
अच्छा,
तो इसलिए उस साइट से हम सैंपल लेते हैं, एक कॉटन का पीस पीछे टच करते हैं और उसको एनालिसिस के लिए भेज देते हैं।
अच्छा,
और आजकल रिजल्ट काफी जल्दी आ जाते हैं,
इसमें ब्लड टेस्ट की जरूरत नहीं,
ब्लड टेस्ट की जरूरत नहीं होती,
लेकिन इसमें हॉस्पिटलाइज करके ये किया जाता है, क्योंकि ये ओपीडी लेवल पे इतना नहीं किया जाता, इसीलिए सीडीएस की वो प्रोटोकॉल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ही ये होता है कि ऐसे पेशेंट अगर सीवियरिटी एक क्लिनिकली डायग्नोज्ड हुई है डॉक्टर के द्वारा, एक फिजिकली डायग्नोज्ड हुई है डॉक्टर के द्वारा, तो वो इमीडिएटली आपको इस टेस्ट के लिए बोलेंगे। और
डॉक्टर साहब, जैसे बहुत दूर दूर हमारे श्रोता हैं, तो अगर ऐसे टेस्ट कराने हैं तो जिला अस्पताल या सरकार की तरफ से इसमें क्या?
देखिए जो जितने भी सरकारी अस्पताल हैं अच्छे वाले, उनमें ये सुविधा उपलब्ध है,
ठीक है, तो अंत में यही कहेंगे कि स्वाइन फ्लू से डरे नहीं, बचाव पर ध्यान दें। हम अपने उन सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। एफएम गोल्ड के स्टूडियो में आने के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के डॉक्टर विजय हड्डा और स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर राखी मेहरा, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस शुभ कार्यक्रम को दोबारा सुनने के लिए हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in देख सकते हैं। चंद्रिका जोशी को अब अनुमति दीजिए। नमस्कार।